ओम शांति। ये रिट्रीट जब डिजाइन कर रहे थे तो हम सभी का एक इंटरनल थॉट था कि आप सभी को एक वैरायटी चीजें, थॉट्स और विचार और चीजें सीखने को मिले, और उसमें से एक ये थॉट निकला कि हमें रिसर्च पेपर्स को भी प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे रिसर्च पेपर जो आपके थीम से रिलेवेंट हो। तो जो हमने रिसर्च पेपर्स के लिए जो थीम तय की है वो है यूथ हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, वैल्यूज एट वर्कप्लेस और ओवरकमिंग चैलेंजेस विथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार से हमने तीन थीम सिलेक्ट की थी, और मैं हमारे बीच आज चार रिसर्च स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर अपने हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, कल चार पेपर और हम सुनेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स को रुद्रवाला, मंडेफ्रो टिलाये, चिंतामणि नानल और दिलीप चौधरी को कि वो स्टेज पे आए। हम सभी इन चारों रिसर्च स्टूडेंट का तालियों से स्वागत करेंगे। ये इनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं अभी हमारे आने वाले समय में हम सुनेंगे, बट बहुत ही हमारे थीम से रिलेवेंट है, तो हमें नए थॉट्स और नई बातें सीखने को सुनने को मिलेगी। तो साथ ही हमारे इन रिसर्च पेपर्स को रिसर्च स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और उनमें एक उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनको बल भरने के लिए हमारे बीच डॉक्टर गुप्ता है, डॉक्टर आरपी गुप्ता से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आकर एज ए जज वो हम सभी को गाइड करेंगे। डॉक्टर आरपी गुप्ता ने एमकॉम, एमफिल, पीएचडी और एमएससी किया है। हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आप 18 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आप पूर्व कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, एसडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पानीपत हरियाणा, और आपको राष्ट्रीय रत्न अवार्ड मिला है हर एक्सेलेंसी श्रीमती प्रतिभा पाटिल गवर्नर ऑफ राजस्थान से, तो और आपको भारत ज्योति अवार्ड भी मिला है। तो आप बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है जो आज हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स को जज भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। जो हमारे रिसर्च हमारा सेटअप जब तक हो जाए तब तक मैं आप सभी को हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स का बायोडाटा और उनके जो पेपर के टाइटल्स है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये चलेगा। हमारे बीच सबसे पहले जो प्रेजेंटर रहेंगे वो चिंतामणि नानल है। आपने कोरिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड मेंटल हेल्थ रेजिलियंस के टाइटल पर अपना पेपर बनाया है, पेपर प्रेजेंट करेंगे हम सभी के बीच। आप रिसर्च स्कॉलर है गुजरात यूनिवर्सिटी में, आपने गोल्ड मेडल लिया है मास्टर इन फिलोसॉफी में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। दूसरे प्रेजेंटर हमारे रहेंगे मंडेफ्रो टिलाये। आप इथोपिया से हैं बट आप पढ़ाई अभी गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में कर रहे हैं। आप पीएचडी स्कॉलर है और आपने एमए इन फिलोसॉफी किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से पटियाला, और बीए डिग्री भी आपने इथोपिया से की है। तो हमारे थर्ड प्रेजेंटर है दिलीप चौधरी। आपका शीर्षक है वास्तविक जीवन में नैतिक निर्णय लेना और अनुप्रयुक्त नैतिकता से परिप्रेक्ष्य में उसका आपने संशोधन किया है। आप पीएचडी स्कॉलर है और आप गुजरात यूनिवर्सिटी में मास्टर किया है, अभी आप अहमदाबाद में हैं, पीएचडी अपना कर रहे हैं, और आपका आपके गाइड है डॉक्टर याग्निक करके हैं। और हमारे फोर्थ प्रेजेंटर है वो है रुद्रवाला, और उनका जो टाइटल है पेपर का वो है ब्रेकिंग द इल्यूजन ऑफ फेल्योर, माया एंड सेल्फ वर्थ इन द लाइट ऑफ संस्कार वेदांता। आप पीएचडी स्कॉलर है और आपने मास्टर्स महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किया है, अभी आप पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं, आप भी डॉक्टर याग्निक के अंडर में अपना पीएचडी कर रहे हैं, तो ये चारों स्कॉलर हमारे बीच आज है। तो मैं निवेदन करूंगा चिंतामणि से, वो अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। हमारे सभी चारों प्रेजेंटर का वेलकम भी कर रहे हैं बैज और बुक्स के साथ। मैं निवेदन करूंगा वैशाली बहन से।
तो कैसे हैं आप सब? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सर ने कहा, मेरा नाम चिंतामणि है और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर हूं और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। तो आज का मेरा टॉपिक है द कोरिलेशन बिटवीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड मेंटल हेल्थ रेजिलियंस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम सब गैदर ही इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें कुछ नया जानने को मिले इस रिट्रीट से। सो मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है या जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो हम थोड़ा डेटा देख लेते हैं कि क्या हमारे इंडिया में अभी स्थिति है यूथ्स को लेकर। सो 10.5% अप्रोक्सीमेटली ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ। तो हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसमें हमें कैसे हेल्पफुल रह सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस इसमें काफी अंतर होता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमें डॉगमास देती है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो इंटरनल बात है, वो एक्सटर्नल चीज नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब प्रैक्टिसेस आती है। रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी में काफी अंतर है। तो हम आज रिलीजियसनेस पे बात नहीं करने वाले, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे बात करेंगे। तो हम पहले ये डेटा देख लेते हैं और ये काफी दयनीय स्थिति है हमारे इंडिया की कि जिसमें 15 से 24 साल के जो यूथ्स है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट सुसाइड रेट्स है। ठीक है, और 1,71,000 सुसाइड्स होते हैं जिसमें 2022 के हिसाब से 4.2% इंक्रीज हुआ है। और ये बेसिक डेटा है, ये आपको कहीं पे गूगल पे से भी मिल सकता है। मैं मेरे मुद्दे पर आता हूं। ये पहली बात तो क्यों होता है, इतने प्रॉब्लम्स यूथ में क्यों है? तो इसके ये मैंने रीजंस निकाले हैं जिसमें सबसे पहले तो है कंपटीशन। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको एक भी फील्ड ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पे कंपटीशन नहीं है। दूसरा है सोशल प्रेशर। मेरी आवाज आपको आ रही है ठीक से? ओके। तो हम सोसाइटी में इतने बंधे हुए हैं कि देखिए, सोसाइटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो पहली बात तो सोसाइटी जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं, जहां तक मुझे लगता है सब इंडिविजुअल्स ही है। ये हमने हमारी तरफ से मान्यता रखी हुई है कि एक सोसाइटी बनी हुई है और फिर सोशल प्रेशर आता है, वर्मा जी के बेटे ने ये किया, गुप्ता जी के बेटे ने ये किया, शर्मा जी के बेटे ने ये किया, तो फिर हमें भी ऐसा आता है कि हम भी कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो वो है सोशल प्रेशर। और ऐसी कई सारी चीजें हैं, एकेडमिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, अगर और आजकल तो 99 और उसमें कंपटीशन चल रहा होता है। ठीक है, पहले तो 70 के अप आ जाते थे फिर भी बहुत हो जाता था कि वाह चलो हम पास हो गए, अब तो 99.1234 ऐसा चल रहा है। तो हमें खुद तय करना होगा कि हम सक्सेसफुल है या नहीं है। दूसरों के कंपैरिजन में अगर हम सक्सेस को ढूंढने जाएंगे तो फिर तो रहेगी बात। अगर हमारे नजर में अगर हम सक्सेसफुल नहीं है तो कोई उसका मायने नहीं रखता, अगर आप चाहे सक्सेसफुल आप दुनिया के नजरों में हो जाए फिर भी। फिर ये तो एक विशियस सर्कल है। देखिए, आपको एकेडमिक सक्सेस मिल गई, फिर आप क्या करेंगे? तो आप जॉब के लिए सर्च करेंगे। अगर आपको जॉब मिली तो उसमें बॉस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप खुश है या नहीं। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो उसमें डिपेंड करेगा, आप फिर आप बोलेंगे कि नहीं अब तो हमें जॉब ही नहीं मिल रही, हम क्या करें। अगर आपके ज्यादा परसेंट आए तो आप बोलेंगे कि अब हमारा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा, फिर उसमें वापस कॉम्पिटिशन आ जाती है। तो ये तो चलता ही रहता है। मेन बात यह है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी का लेवल कितना है। अगर आप उसमें फेल है, अगर आप अपने आप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर आजकल चल रहा है साइबर बुलिंग। ठीक है, हम अपने गिरेबान में जागते नहीं है, हम ज्यादातर यही देखते हैं कि लोग, मतलब हम लोगों को ज्यादा क्रिटिसाइज करने में ही मान रहे हैं, भले ही हमारा कुछ भी ना हो रहा हो जिंदगी में, फिर भी हम कमेंट्स करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम इन सब चीजों से दूर रहे और पहले हम देखें कि हम कहां पर हैं। ठीक है, ये तो है एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट मेन जो चीज है वो है एक्चुअल रीजंस। ये है कि हमारा लाइफ में पर्पस ही डिसाइडेड नहीं है, हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इंसान की यही है। और हम जो भी काम करते हैं, आप कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो वो क्यों सिलेक्ट करते हैं? ज्यादातर लोग यहां पे ऐसे होंगे, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग होंगे कि हमें इस स्ट्रीम में जाके पैसा अच्छा मिलेगा या करियर अच्छा होगा, वो देख के हम स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं, ना कि हमें वो चीज पसंद है। इस चीज से होता क्या है कि हम उस फील्ड में भी ज्यादा माहिरत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उस चीज में मन ही नहीं लगता है। हम करना कुछ और चाहते हैं, हमें पैसे की तरफ ध्यान है हमारा, और हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो पहली बात ये खत्म होनी चाहिए इंडिया से, ऐसा मैं चाहता हूं। इंसान को जो चीज पसंद है, मैं यहां पे अगर पेरेंट्स होंगे तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में उसको भेजें, ना कि आगे जाके क्या होगा। देखिए, हमें कल का पता नहीं है, कल का क्या, हमें नेक्स्ट श्वास का भी पता नहीं है कि हम ब्रेथ ले पाएंगे कि नहीं, तो इतना आगे का सोचने का कोई मतलब रहता नहीं है। हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं हम उसी पे ध्यान दें। देखिए, बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है, डेथ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो एक्सट्रीम पोल्स है वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। और इंसान इसी भ्रम में लगा रहता है कि बीच का जो टाइम स्पेन है उसमें हमारे सब कंट्रोल में है। तो आप इस चीज को जरा गौर से लीजिए कि हमारे कंट्रोल में बहुत कम चीजें होती है, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हम उसी पे ध्यान दें। ये श्वास लेना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम बातें करते हैं कि हम ये हासिल कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे। अगर आप गोल रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आप इस चीज को गहराई से देखिए। ठीक है, हमने अभी अभी ये एक इंसिडेंट देखा होगा, ये अभी जो आईपीएल की मैच हुई थी उसमें 11 लोगों की डेथ हो गई, तो उन्होंने भी चाहा नहीं होगा कि हम सेलिब्रेट करने जाएंगे और डेथ हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी चाहता नहीं है, हमने पहलगाम वाला इंसिडेंट भी देखा है, लेकिन ये सब चीजें होती रहती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मूवमेंट टू मूवमेंट जिए, जो चीजें आपको जिस जो टाइम मिला है उसमें आप उसको फुल्ली आप अच्छे से जिए, बस यही लाइफ का पर्पज है। आप फ्यूचर में उसका पर्पज देख के और आप करंट का सिचुएशन आप बर्बाद ना करें। और एक तो चीज है कि जो एंडलेस डिजायर्स है, ठीक है, उसमें मैं आपको एक स्टोरी कहना चाहूंगा। मुझे पता है कि मेरे आगे भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स है, पर ये मेरी दिली बात है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे महान बोलते हैं कि सिकंदर द ग्रेट या अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो एक ही है। और एक डायोजनीज नाम का फकीर हुआ, वो एक ग्रीक फिलोसोफर था। अब ये अलेक्जेंडर ने इसके बारे में काफी सुना था कि ये कौन है कि जो राजा से भी नहीं डरता है और जिसके पास कुछ है नहीं फिर भी इतना बेगाब होके घूमता है ऐसे। तो इसने खुद सिकंदर ने चाहा कि मैं इससे मिलना चाहता हूं। तो ये एक बार घूमते घूमते जब ये कॉन्कर करते करते जा रहा था, तब ये एक बार आया उसके पास, और फिर उसने डायोजनीस ने पूछा कि आप क्या क्या आपने हासिल किया है। तो उसने बोला कि मैं माइनर एशिया कॉन्कर करके आया हूं, मैं टर्की कॉन्कर करके आया हूं, मैं ईरान, इराक, सीरिया, सब कुछ मेरा कॉन्कर हो चुका है। तो उसने बोला कि अब आगे आप क्या करना चाहते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब डायोजनीस अलेक्जेंडर से पूछता है, तब डायोजनीस क्या कर रहा होता है, तो वो आराम फरमा रहा होता है अपने कुटिया में। तो ये बोलता है कि अब मैं इंडिया कॉन्कर करूंगा, फिर अब मेरा अरेबिया बाकी है और इतनी इतनी चीज बाकी है, और बाद में फिर मैं वर्ल्ड कॉन्कर करके फिर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। तो फिर डायोजनीस ने पूछा कि उसके बाद तू क्या करेगा। उसने बोला कि पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, और बाद में फिर मैं आराम करूंगा। तो उसने बोला फिर इतनी सारी झंझट करने की जरूरत क्यों है, मैं अभी आराम ही तो कर रहा हूं, आ जा फिर बैठ जा मेरे बाजू में आके। तो जिसका मेंटल स्टेबिलिटी का लेवल इतना है, जिसको पता है, और उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि वो कॉन्कर तो कर नहीं पाया पूरा वर्ल्ड, उसके भी हौसले तो बहुत बुलंद थे, लेकिन वो इंडिया कॉन्कर करने आया था, इंडिया कॉन्कर करने के बिना ही वो मर गया, वो भी 32 साल की उम्र में वो मर गया है। तो आप ऐसा प्लीज ना चाहे, ये मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, मूवमेंट टू मूवमेंट जीने का ट्राई करें, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस
टाइम
हमें कैसे
टाइम ओवर हो गया एक मिनट आप कंक्लूड कर रहे हैं।
ठीक है, तो बुद्धिज्म में एक प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस की, कि बुद्ध ने बोला है डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, बी इन द प्रेजेंट। और आप आपके थॉट्स को नॉन जजमेंटल वे में देखें, कि थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आप उसको कुछ भी नेमिंग ना करें, वो अच्छे हैं बुरे हैं जैसी भी चीजें हो। और ये हमें साइकोलॉजी में भी काफी हेल्पफुल रहता है, इसमें माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस थेरेपी का भी काफी रोल है, और ये हमें सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी काफी हेल्पफुल है, और इसमें इमोशनल बैलेंस भी हमारा काफी कंट्रोल में रहता है। दूसरा है स्थित प्रज्ञ, जिसको हम स्टेडी विजडम बोलते हैं, जिसमें गीता के दूसरे अध्याय में हमें श्री कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं कि जो इंसान स्थित प्रज्ञ है, कि जो ज्यादा पास्ट के बारे में भी ड्वेल नहीं करता है, जो ज्यादा फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचता है, क्योंकि देखिए जो फ्यूचर में है उसे हम एंग्जाइटी बोल देते हैं, जो पास्ट में है उसे हम डिप्रेशन बोल देते हैं, उसके कारण जो चीजें हो रही है तो वो स्ट्रेस का काम है। तो ये सब हो ही इसी रियल है क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं। तो जिस इंसान को अपना जो भी सक्सेस है तो उसे पचाते आ गया, या फिर जो फेलियर है उसमें भी वो ग्रेसफुल रह गया, तो बस उसी में सब कुछ आ गया है। और ये रिसर्च भी मैंने इसमें ऐड किया है कि जो इंडियन साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसमें इन्होंने स्थित प्रज्ञ के मॉडल को भी ऐड किया है फॉर मेंटल रेजिलियंस एंड स्ट्रेस इम्यूनिटी, जो IIT खड़गपुर का रिजल्ट। और सिखिज्म में भी एक कंसेप्ट है संगत और सेवा का, और संगत हम अभी ये जो हम रिट्रीट में है तो ये भी हम अच्छे लोगों के संगत में ही है, कि जो हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ही रिट्रीट्स आगे भी होते रहे, कि जिससे यूथ को काफी हेल्पफुल रहे, और जो भी इस चीज से गुजर रहा है उसे भी काफी हेल्पफुल रहे। और ये चीज, और जो सेवा की भावना है, कि जो निष्काम कर्म का भी जो कंसेप्ट है गीता में वो बताया गया है, कि आप मतलब उसमें कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आप फ्रूट्स के बारे में ना सोचे, आपका कर्म करते रहे, और कर्म भी ऐसा करना है कि जो निष्काम हो, जो हमें सेल्फलेस सर्विस करनी है, ना कि इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे क्या लाभ है। ठीक है, आप अगर लोगों की सेल्फलेस सर्विस अगर करते हैं तो वो अपने आप आपको वो पे बैक हो जाता है, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता है। तो वही सिखिज्म का वो सेम कंसेप्ट है सेवा का। अब यहां पे भी काफी लोग सेवा दे रहे हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं है आपसे, वो अपनी खुशी से दे रहे हैं। सिखिज्म में भी लंगर का कंसेप्ट होता है, उसमें वो लोग कास्ट क्रीड ये देख के आपको नहीं बोलते कि आप कौन से जाति के हैं या कौन से धर्म के हैं तो ही हम आपको आने देंगे, वो हर किसी के लिए इक्वली ट्रीट करते हैं सबको। फिर है हमारे इंडियन फिलोसॉफी का योग का कंसेप्ट। योग में कहा गया है योगश चित्त वृत्ति निरोध, कि हम मेंटल फ्लक्चुएशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
आपका टाइम अप हो गया।
ओके, ठीक है, तो अब मैं ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट ये एक लास्ट स्लाइड है, थैंक यू सो मच, लास्ट स्लाइड है कि हम यूथ के लिए हम कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप बीच बीच में आपके वर्क के दौरान माइंडफुलनेस ब्रेक लिया करें, जितना भी कम आप कंप्यूटर का या फिर या आपके जो भी डिजिटल डिवाइसेज है उसका कम से कम यूज करें तो अच्छा है। जितना आपकी जरूरत है आप उतना ही यूज करें, आप ये रील्स देखने में और इसमें उसमें ज्यादा एंटरटेनमेंट के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, इंसान को जरूरत होती है, बात अलग है, लेकिन इतना भी आप उसके अंदर ही ना रह जाए कि आपकी जो जरूरत की चीज है वो साइड में रह जाए। और विजडम कैफेज जो अभी हैप कैफे यहाँ पे हो रहा है, वैसा भी आप कुछ कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आप सेवा डे कर सकते हैं, कि जिसमें आप सेल्फलेस सर्विस आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हैं। फिर आप आपके काम को ही एज अ सर्विस ले, ना कि मुझे काम करना पड़ रहा है या आप रोज उठ रहे हैं सुबह सुबह और वो भी बस ऐसे मुंह सड़ा के जा रहे हैं कि कहां मुझे ये काम करना पड़ रहा है, आपको पसंद तो है ही नहीं काम, फिर भी बस पैसे मिल रहे हैं आपको मंथ एंड में तो आप चले जा रहे हैं। तो आप पैसे के लिए काम ना करें, आपको उससे खुशी मिल रही है और आप सर्विस कर रहे हैं उस काम से, इसीलिए आप काम करें। और योगा और प्राणायाम का आपके लाइफ में जितने से जितना आप यूज कर सके उतना करें। थैंक यू सो मच, ओम शांति।
थैंक यू चिंतामणि जी। नो प्रॉब्लम, वी विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। आपका कोई क्वेश्चन, हम अभी भाई सर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो हम
जो पेपर प्रेजेंट करने वाले बाकी आएंगे उस पर ध्यान रखें, जो टाइम दिया हुआ है आपको मैक्सिमम 9 मिनट्स, अगर उससे ओवर करेंगे तो सब चीज वो नेगेटिव में जाएगी, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो इस बात का आप ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट का। कोई क्वेश्चन करना चाहता है?
आपका आपने ज्यादा टाइम ले लिया तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लेवल पर क्वेश्चन अभी अटेंड नहीं कर रहे। आई रिक्वेस्ट नाउ मंडे फ्रो तलाए टू प्रेजेंट हिज पेपर। उनका जो टाइटल है वो एक्सप्लोरिंग वैल्यूज ऑफ वर्क एंड जस्टिस। आई रिक्वेस्ट मंडे फ्रो प्लीज।
शांति, before starting this paper, I think I have to tell about the content of our whole paper. The first one is introduction. You will focus about what mass of work and from perspective of philosophy. The second one is we have to look for values which is associated with work, the intrinsic and instrumental values of work. And the third concept is justice, specifically in aspect of work. And our focus is specifically use. And finally, you will look for conclusion. As you know, work is subject to a long philosophical quest from ancient time to now. While we look for Western philosophic aspects specifically, the ancient document that we get is from the Republic, which has been written by Plato, which has been proposed system of labor specialization. That labor specialization has been either tacitly or explicitly focused on the capacity of individuals, and he have been intentioned to focus on our power or our capacity, and to enhance our own abilities. Like he have been classifying classes like based on inborn abilities. And the philosophical attention to work and the labor seems to increase when work arrangements or values appear to be in flux. And for economic inequalities and injustice in employment, we have to center the societies continued to rise with technological automations seems to be poisoned, eliminated job and other aspects which has been lead to dissatisfaction for certain societies. While you look for values in work, literally most people may consider as the value of work with material aspect or material sake, but in the reality the value of work refers to beliefs and the qualities that people attach to their work. These values guide individuals in their approaches of work that associate to interact with other and the meaning they have to do. And work values can differ significantly depend on cultural or personal and organizational factors. But generally, we can categorize these work values into two. The first one is intrinsic value, and the second one is instrumental value. In intrinsic value, the concept associated with internal personal reward of satisfaction that individual derive from engaging their work rather than external rewards. This intrinsic value doesn't focus on aspects of material worth, rather than that the aspect focus on internal and personal rewards, like purpose and meaning. While we have a work with such value, we have feelings that the work is important contribution to bigger than oneself, can be deeply fulfilling when people believe their job serve greater purpose. Another aspect of intrinsic value is mastery and skill and development, on opportunity to learn, grow, improve one skill, and power, it be the power for motivation. The third one is autonomy and independence. As you know, work has the highest value of creating autonomous capacity and independence. Another one is creativity and innovation, recognition, effort and accomplishment, working-life balance and flexibility, and finally, connection and contribution, sense of contribution, satisfaction and overcoming challenge will be considered as intrinsic values of work. Second, value of work is instrumental. As you all know, instrumental motivation is more focused on achieving external goals or rewards from work. Hence, some common instrumental reasons people to take work are access or reasons individual in work will be financial compensation, career advancement or security and instability or material reward, social expectation, skill development for future opportunities or etc. So aspect will be the first is intrinsic and the second one is instrumental. While we look for and the concept of justice, we can look at the first one is justice according law according to justice. While justice, this concept is of itself is we quest if the leg itself is either just or, but while we look justice according to law, any professional will enact or execute the value of certain workers. While we look justice, we always look for concepts of deprivation because the role of justice itself is to minimize the gap of injustice or to make it possible to be done. And the deprivation is state of being kept from possessing, enjoying, or using something. Maybe it depends on gender, maybe it depends on age, maybe it depends on physical status like disability or anything else related with that. So this deprivations enhance people of the sect of or the level of injustice which has been seen in various aspects. So that deprivation, specifically the researches which has been seen recently shows, it's obvious that gender deprivation has been leading to work deprivation, and also it's obvious that disability and the deprivation is common, specifically in workplace. But currently, the another aspect of deprivation has been have been born. That is deprivation of work, specifically for youth. Most of the time, while we consider about injustice, we have been looking for deprived societies based on age or old age. But currently, specific youth have been victim of this injustice because of maybe scientific. I have to conclude. I think the main point of this paper is should have to exercise aspect of work with justice, and you have to treat deprived society with deprived one, specifically with aspect of enhancing the opportunity to get such job, and the making of just society is not only for the one who is on such status, but for the society itself, creating the just environment or minimizing the gap is must. Thank you so much.
Thank you, Mandapro. You have completed in 9 minutes. Now I'll request Dilip Chaudhary. आपका शीर्षक है वास्तविक जीवन में नैतिक निर्णय लेना अनुप्रयुक्त नैतिकता से परिप्रेक्ष्य में. अब पीएचडी स्कॉलर है गुजरात यूनिवर्सिटी में.
ओम शांति. देख के लग रहा है सबको कि 12 बज चुके हैं. मैं दिलीप चौधरी गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद से फिलहाल पीएचडी कर रहा हूं वहां पर, और आज का मेरा यहां पर टाइटल है वास्तविक जीवन में नैतिक निर्णय लेना अनुप्रयुक्त नैतिकता से परिप्रेक्ष्य में है। तो आज हम सभी बात करते हैं नैतिकता की और नैतिक रहने की बातें करते हैं, तो मैं आज वो रिसर्च करके लाया हूँ कि कहाँ कहाँ हमें दिक्कत आती है नैतिक निर्णय लेने में, एक दुविधा सी बन जाती है हमारे लिए। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लाइन टू लाइन जाऊंगा। वास्तविक जीवन में नैतिक निर्णय लेना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को विभिन्न मूल्यों, सामाजिक नियमों, व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक प्रभावों के आधार पर कार्य करना होता है। अनुप्रयुक्त नैतिकता यानी कि अप्लाइड एथिक हम बोलते हैं, इस संदर्भ में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है कि जो सिद्धांतों को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। यह शोध पत्र चिकित्सा, व्यवसाय, पर्यावरण और व्यक्तिगत जीवन में जैसे क्षेत्रों में नैतिक निर्णय लेने की चुनौतियों और प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। साथ ही इसमें विभिन्न नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों जैसे उपयोगितावाद और कर्तव्यवाद और सद्गुण नैतिकता के अनुप्रयोग का विश्लेषण किया गया है। नैतिकता का परिचय तो मानव व्यवहार के उन मानकों और सिद्धांतों से संबंधित है जो यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है। अनुप्रयुक्त नैतिकता उन सिद्धांतों का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग करने का विद्या है, चाहे वह डॉक्टर द्वारा मरीज की जान बचाने का निर्णय हो या कोई व्यापारी उपभोक्ताओं के साथ ईमानदारी बरतने का मामला, सभी में नैतिक निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। परिभाषा नैतिकता की बात करें तो अनुप्रयुक्त नैतिकता वह शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों को व्यवहारिक स्थितियों पर लागू करती है। ये व्याख्या ब्यूचर और चाइल्डरेज ने दी है। अब बात करते हैं हम चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता की, तो कई बार यूथेनेशिया जैसी चुनौती आती है, कोई पेशेंट दर्दी जो ऐसी पीड़ा से गुजर रहा है कि उससे सही नहीं जाती, तो उसे इच्छा मृत्यु दी जाए कि नहीं दी जाए, इच्छा मृत्यु का निर्णय लेना नैतिक कैसे मानना, अगर इच्छा मृत्यु दी जाए तो नैतिक है कि उसकी पीड़ा सहन करने दे और उसे इच्छा मृत्यु न दे वो नैतिक है। तो ऐसी समस्याएं कई बार नैतिक निर्णय लेने में आती है चिकित्सा क्षेत्र में। उसमें उपयोगितावादी दृष्टिकोण यह बात करता है कि यदि किसी कार्य से अधिकतम लोगों को लाभ होता है तो वह नैतिक है, और वही कांट का कर्तव्यवाद कहता है कि कार्य का उद्देश्य नैतिक होना चाहिए, उसका परिणाम नहीं। जो हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य नैतिक होना चाहिए, उसके परिणाम पर चर्चा नहीं की है। अब व्यवसाय में नैतिकता के निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो व्यवसाय में उपभोक्ताओं के साथ ईमानदारी, सूचना देना, कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता रखना, और कई बार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने जैसे, इंसानों को नुकसान पहुंचाने जैसे उत्पादक मिलते हैं मार्केट में। जैसे कि यदि कोई कंपनी ऐसे उत्पादक बेचती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन उसकी मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है कोई चीज की, तो उस स्थिति में नैतिक निर्णय कठिन हो जाता है कि इंसानों की जो मनुष्य की सेहत का ध्यान रखे कि उसकी डिमांड पूरी करे। पर्यावरण में हम कई बार देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों संसाधन लूट रहे हैं हम अभी। उस प्रश्न में हम बात करते हैं कि अब औद्योगिक विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो उसमें जंगल काट के उद्योग बनाना ये सही बात है? उस पर सगुण नैतिकता और इस संदर्भ में प्रश्न उठाता है कि नैतिक निर्णय व्यक्ति द्वारा लिया गया कार्य हो सकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिकता के बारे में देखें तो वास्तविक जीवन में हम अक्सर व्यक्तिगत निर्णय में भी नैतिक द्वंद का सामना करते हैं, जैसे कि किसी को चोट से बचाने के लिए झूठ बोलना और भूख मिटाने के लिए चोरी करना, क्या यह नैतिक है कि अनैतिक है? इस बारे में भी कभी कभी नैतिक निर्णय लेने में मुश्किलियां आती है, दुविधाएं आती है, जैसी समाज को प्रभावित और संस्कार पर प्रभाव डालते हैं। अब नैतिक निर्णय लेने में कुछ कारक काम करते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। हर समाज में नैतिकता की अपनी परिभाषा अलग अलग होती है, हर समाज में, हर संप्रदाय में नैतिक निर्णय लेने की परिभाषा अलग अलग अपने हिसाब से होती है। धार्मिक मूल्य, कई लोग धर्म के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई धर्म है, कोई संप्रदाय है, तो वो उनके आधार पर, उनके मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। व्यक्तिगत अनुभव, पूर्व अनुभव निर्णय को प्रभावित करते हैं। हमारे कुछ समय पहले के अनुभव है, एक ही चीज को लेकर दोबारा अनुभव है, वो दूसरी बार निर्णय लेने में व्यक्तिगत तौर पर हमें प्रभावित करता है। शिक्षा और जानकारी, शिक्षित व्यक्ति अधिक सम्यक और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। अब कुछ दुविधाएं यहां मैंने दी है, वहां पर मैं सारी दुविधाएं नहीं बताऊंगा, कुछ एक दो दुविधाएं बता के। पारिवारिक दायित्व बनाम व्यक्तिगत आकांक्षा, कई बार हमने देखा है ये हमारे समाज में, हमारे आसपास पड़ोसियों में ये प्रश्न उठता है। किसी व्यक्ति को विदेश में एक बड़ा करियर अवसर मिलता है, उस लेकिन उसके वृद्ध माता पिता को उसकी देखभाल की आवश्यकता भी है। इस बीच में उसको कौन सा निर्णय लेना सही रहेगा, ये एक दुविधा है। अपने सपनों को और करियर को आगे बढ़ाना है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभानी है, तो उसमें एक नैतिक प्रश्न उठता है, वो यह है, क्या अपने आत्मविश्वास को रोकना नैतिक रूप से सही है? यदि किसी प्रियजन को आपकी आवश्यकता हो, तो यह भी एक दुविधा बनी है जो नैतिक निर्णय लेने में हमें बाधाएं उत्पन्न होती है। एक नैतिक सिद्धांत बनाम व्यवहारिक परिणाम की बात करें, तो आप एक ट्रेन कंट्रोलर हैं और देखते हैं कि पांच लोग एक पटरी पे हैं और दूसरी एक पटरी पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो ट्रेन को मोड़ने से पांच की जान बच सकती है और एक की जान जाएगी। अगर हम जा रहे हैं जिस पटरी पे, वहां पर पांच लोग खड़े हैं और मोड़ लेते हैं, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसमें पांचों की जान बचा के एक की जान ली जा सकती है और पांचों को बचाया जा सकता है। तो ट्रेन के मोड़ और एक की जान लेकर पांच की जान बचाना और ट्रेन को मोड़ने पर नैतिक रूप से हत्या से बचना, ये नैतिक प्रश्न के क्या परिणाम आधारित नैतिकता सही है जब व्यक्ति को जानबूझकर बलिदान किया जाता है? जो लोग पांच लोग आए हैं वो अचानक से सामने आ गए हैं, ट्रेन जा रही है, और उनको बचाने के लिए जानबूझकर एक व्यक्ति की हत्या करना क्या नैतिक है? यह भी सवाल उठता है। तो निष्कर्ष ये है कि अनुपरित नैतिकता एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे निर्णयों का मूल्यांकन करने का अवसर देती है। वास्तविक जीवन में नैतिक निर्णय लेना कभी भी सरल नहीं होता, और लेकिन नैतिक सिद्धांतों, अनुभवों और विवेक का प्रयोग हम अधिक उत्तरदायी और नैतिक विकल्प चुनकर कर सकते हैं। इसमें संदर्भ जो लिए गए हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
आपका टाइम
ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू, आपका विषय बहुत ही रोचक था, बहुत ही अच्छा आपने पेपर बनाया। मैं निवेदन करूंगा रुद्रवाला से, आप पीएचडी स्कॉलर है महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी में, आपने मास्टर किया है, आपका टाइटल है ब्रेकिंग द इल्यूजन ऑफ फेलियर माया एंड सेल्फ वर्थ इन द लाइट ऑफ संस्कार वेदांत।
Good afternoon everyone. My name is Rudrawala and I am research scholar from Gujarat University. Today I will be presenting my paper titled Breaking the Illusion of Failure, Maya and Self-Worth in the Light of Sankara Vedanta. So I think you all know about the Adi Shankaracharya. So we link with the failure and the concept of Maya from the concept of failure. So, Maya and Self-Worth in the Light of Shankara Vedanta, this work explores how Advaita Vedanta can help us rethink failure and self-worth, especially for today's youth. So, in our society, success is celebrated while failure is seen as personal weakness. This leads many people, especially young people, to feel inadequate. My paper draw on Advaita Vedanta, especially Adi Shankaracharya's teachings, to suggest that this sense of inadequacy is the illusion caused by ignorance, avidya, and illusion, maya. Our true nature is not limited by success or failure. Many students and young people today tie their worth to external achievements, marks, job, social media. But when they don't meet these expectations, they feel like failure. According to Advaita Vedanta, this is the cause of mistaken identity. We identify with the ego self instead the true self, Atman. Cultural weight of failure. Social system reward performance. Cultural weight of failure. Social system rewards performance not being. Even though we say failure is part of our growth, we don't really believe it. Youth suffer anxiety, depression and loss of confidence. We must ask, what if our entire way of thinking about success and failure is wrong? Vedantic lens, Maya and Avidya. Shankara's Vedanta teaches that the world of success and failure is Maya and illusion. The real self is not the body or the mind, but the Atman, which is Brahman, pure consciousness. Feeling of not being good enough are like mistaking a rope for a snake. When knowledge arises, the illusion disappears. So in contemporary relevance, popular philosophers like Alan Watts and spiritual teachers like Ram Das Ji introduced Advaita Vedanta to Western audience. Watts described the ego as a social construct with no physical reality. This modern voice brings Shankara's insight into practical relevance, especially for in time of failure and crisis. So even modern thinkers support this shift. Carl Jung's talk about the growth mindset and Christian Neff emphasize self-compassion. Advaita goes further. Your worth is not based on what you do, but on what you are. You are already whole, already free. So, what do we take from this? That we are not our failure. Advaita Vedanta offers both a spiritual and psychological healing through viveka, discrimination, vairagya, detachment, and atma vichar, self-inquiry. We can reconnect with the unchanging self. This shift can free young mind from anxiety and give them peace. As I conclude, I leave you with this thought. In realizing the self as Brahman, one rises above the illusion of success and failure and comes home to a world that was never lost, only forgotten. Thank you.
I'll request hamare judge sir se ki sir ko koi input ya koi comment sir ko dena ho to. Gupta sir. या कल भी चार स्टूडेंट सर और प्रेजेंट करेंगे बट आज के लिए कुछ इनको गाइडलाइन देनी हो सर.
ओके, सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया लेकिन दो तीन बातें हैं जिसमें आपको, वैसे तो ठीक है आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके कॉलेज के हिसाब से, रिसर्च स्कॉलर के हिसाब से, लेकिन हमारा जो बेस था वो स्पिरिचुअलिटी को आपने कहाँ तक इंक्लूड किया इसमें वो थोड़ा सा कम रहा. दूसरा जो टाइम दिया हुआ है पता नहीं आपको पहले बताया गया नहीं बताया गया, 9 मिनट मैक्सिमम है और आपने 9 मिनट से ज्यादा लिए हैं. जब आप टाइम अलॉटेड से ज्यादा लेते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होता. बस यही मुझे कहना था कि आपका अच्छा रहा और सब तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे. थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू सर. कल हमारे जो भी प्रेजेंटेशन होंगे उसमें इस चीज को और ध्यान रखेंगे. आगे का जो हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वर्कशॉप का, तो वो हम अभी सभी से शेयर करेंगे।
हम सभी बहुत ही अच्छे से सब्सिक्वेंट सेशन में लंच के बाद वर्कशॉप करेंगे। वर्कशॉप का टाइटल है क्रिएटिंग योर स्पिरिचुअल टूल बॉक्स। तो उसका ब्रीफिंग प्रफुल्ल भाई हमें करेंगे। प्रफुल्ल भाई पहुंच रहे हैं। मीन टाइम मैं आप सभी से आपके ध्यान में देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा बैज पहना है, उस पर कुछ टाइटल्स लिखे होंगे, वो आपके ग्रुप के नाम है। तो वो ग्रुप कहाँ बैठेगा? फॉर एग्जाम्पल जो डिविनिटी ग्रुप है वो मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे, तो मेडिटेशन हॉल इसके नीचे एग्जिट है, इसी हॉल के, हार्मनी हॉल के नीचे एग्जिट है। तो हम 3 बजे वर्कशॉप में वहां पर हम सभी मिल लेंगे। तो डिविनिटी ग्रुप मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे, रेडियंट ग्रुप भी मेडिटेशन हॉल में बैठेगा, डिवोशन ग्रुप भी मेडिटेशन हॉल में बैठेगा, और हार्मनी ग्रुप है वो एकेडमी हॉल नंबर 1, हमारे इस बिल्डिंग के अपोजिट में एक और बिल्डिंग है, उसको हम एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड करके बिल्डिंग को पहचानते हैं, उसमें 8-10 हॉल्स है। थैंक यू गुप्ता सर। तो हम एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड में बैठेंगे। कौन सा ग्रुप बैठेगा? हार्मनी। तो और एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड में बहुत सारे हॉल है, उसमें वो हॉल नंबर 1 में बैठेंगे। ग्रुप है ल्यूमिनेट, वो हॉल नंबर 3 में बैठेगा। और ग्रुप नंबर 5 है, ग्रुप का नाम है ल्यूमिनेट। ग्रुप नंबर 6 है एनलाइटन, ग्रुप का नाम है, वो हॉल नंबर 7 में बैठेंगे। और ये सब हम ध्यान में रखें, और हम हर जगह पे उसको एक पेपर में प्रिंट करके वहां चिपका भी देंगे, जो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो या जो भी वॉलेंटियर बाहर होंगे वो आपको गाइड भी करेंगे। हॉल नंबर ग्रुप नंबर 7 है, वो नाम है ग्रुप का अवेकनिंग, और ये हॉल नंबर 8 में बैठेंगे, एकेडमी हॉल में, एकेडमी बिल्डिंग में हॉल नंबर 8 है। और ग्रुप नंबर 8 है और ग्रुप का नाम है एलिवेटेड, और ये हॉल नंबर 9 में बैठेगा। फिर ग्रुप नंबर 9 है, वो हॉल नंबर 10 में बैठेगा, ग्रुप का नाम है इनर लाइट। तो सभी ध्यान से सुनेंगे, जो भी आपके ग्रुप का नाम है आपके बैच पे जो लिखा है, उस हॉल में आपको 3 बजे वर्कशॉप के लिए पहुंचेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है फेथ, तो फेथ है एकेडमी हॉल नंबर 8 में बैठेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन बैठेगा एकेडमी हॉल नंबर 10 में। और अगला ग्रुप है पैशन, पैशन बैठेगा हार्मनी हॉल में। ये हार्मनी हॉल है, ये हार्मनी हॉल में हम 4 ग्रुप बैठेंगे, तो एक पैशन यहां बैठेंगे। अगला ग्रुप है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी हॉल नंबर 7 में बैठेंगी, एकेडमी हॉल नंबर 7 वहां पर। अगला ग्रुप है यूनिटी, यूनिटी है बैठेंगे हॉल नंबर, एकेडमी हॉल नंबर 9, एकेडमी बाजू वाले बिल्डिंग हॉल नंबर 9। और अगला ग्रुप है एक्सेलेंस, तो एक्सेलेंस बैठेंगे मेडिटेशन हॉल, मेडिटेशन हॉल इसके नीचे एग्जिट, उसको मेडिटेशन हॉल कहते हैं। तो मेडिटेशन हॉल में करीब 4 ग्रुप बैठेंगे, तो उसमें से एक्सेलेंस भी वहां बैठेगा। अगला ग्रुप है काइंडनेस, काइंडनेस मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे। आप वहां जाएंगे तो एक चेयर का अरेंजमेंट किया होगा और वहां पर कोई लेबलिंग भी किया होगा, तो उस रीति से आप उस जगह को भी आइडेंटिफाई करना।